नमस्कार भारत, तारीख 15 मार्च, दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। महाराष्ट्र सदन घोटाले में 11 घंटे लंबी पूछताछ के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री एनसीपी नेता छगन भुजबल गिरफ्तार, राज्य का राजनीतिक तापमान गर्म।
पूरा वेंडेटा पॉलिटिक्स है, जो 4-5 साल से ये लोग जो झूठा प्रचार कर रहे थे उसको आधार देने के लिए कार्रवाई हुई है। जब वो संबंध पे हाजिर होकर कोऑपरेट कर रहे हैं तो अरेस्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं।
जेएनयू प्रकरण को लेकर छात्र संघ आज निकाल रहा है पीपल्स मार्च। 4 साल पूरे होने के मौके पर जश्न मना रही है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार।
घोटाले बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, ये प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है।
सुनाएंगे कश्मीरी पंडितों पर विशेष श्रृंखला इनका भी कश्मीर। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख नेता छगन भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में बने महाराष्ट्र सदन घोटाला मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। कल 11 घंटे तक चली पूछताछ के बाद निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा ने फोन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीरिया से रूसी सेना के हटाए जाने पर बात की है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया से रूसी सेना को वापस बुलाने की घोषणा की थी। व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों राष्ट्रपतियों के बीच सीरिया में शत्रुता के माहौल को बिल्कुल खत्म कर देने के लिए जरूरी अगले कदम पर भी बात हुई। ब्रिटेन के विदेश मंत्री फिलिप हैमंड ने कहा कि रूस का ये कदम सकारात्मक हो सकता है। वहीं जर्मनी के विदेश मंत्री के मुताबिक इससे सीरियाई राष्ट्रपति असद पर एक राजनीतिक समझौते पर पहुंचने का दबाव बनेगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस ने एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदार डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट ने रिपब्लिकन पार्टी से अपील की कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हों।
You have an aspiring political leader inflaming tensions.
आपकी पार्टी में एक ऐसा महत्वाकांक्षी नेता है जो तनाव भड़का रहा है, लोगों के नकारात्मक आवेग को भड़का रहा है और उनकी असुरक्षाओं से अपने चुनावी अभियान को पुख्ता करना चाहता है। बदकिस्मती से एक के बाद एक बड़े रिपब्लिकन नेता को हम डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हुए पाते हैं और मुझे वाकई नहीं पता कि वो ऐसा कैसे कर लेते हैं। ये थे जॉश अर्नेस्ट के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। आज म्यांमार में 50 साल बाद एक नागरिक सरकार का पहला राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान होगा। राष्ट्रपति पद की इस दौड़ में 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन आंग सान सूची की पार्टी एनएलडी के उम्मीदवार हितिन क्यो का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। म्यांमार के संविधान के तहत खुद सूची राष्ट्रपति नहीं बन सकती, हालांकि उन्होंने ये लगभग स्पष्ट कर दिया है कि वे अप्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति की भूमिका में रहेंगी। बहरीन में खबर है कि अधिकारियों ने विपक्षी नेता जैनब अल ख्वाजा को जेल में डाल दिया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार पुलिस उन्हें उनके घर से उनके 1.25 साल के बच्चे के साथ पकड़कर ले गई। 2014 में बहरीन के शासक शाह हमद की तस्वीर फाड़ने के आरोप में जैनब को 3 साल की सजा दी गई थी। पिछले साल अक्टूबर में एक याचिका अदालत ने इस सजा को कम करके 1 साल का कर दिया था, लेकिन ये साफ नहीं है कि उस सजा को लागू करने में अधिकारियों ने इतनी देर क्यों लगाई। जैनब अल ख्वाजा बहरीन के प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता अब्दुल हादी अल ख्वाजा की बेटी हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि आपने अभी समाचारों में सुना, महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को कल प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी से पहले करीब उनसे लंबी 10 घंटे तक पूछताछ हुई। उन्हें महाराष्ट्र सदन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है और घोटाले के वक्त भुजबल महाराष्ट्र सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे। एनसीपी ने छगन भुजबल की गिरफ्तारी को बीजेपी की प्रतिशोध की राजनीति बताया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा,
पूरा वेंडेटा पॉलिटिक्स है, जो 4-5 साल से ये लोग जो झूठा प्रचार कर रहे थे उसको आधार देने के लिए कार्रवाई हुई है। जब वो संबंध पे हाजिर होकर कोऑपरेट कर रहे हैं तो अरेस्ट करने का कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों, विजय मल्ल्या थोड़ी भाग जाने वाले, क्यों अभी कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये पूरे टोटली विंडेक्टिव पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है, जिसको डिलीवर नहीं कर पा रही है, टोटल फेलियर है। डायवर्जन के लिए काम कर रहे हैं, अभी डाइवर्ट कर रहे हैं पॉलिटिक्स।
ये थे प्रवक्ता नवाब मलिक जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं। उधर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने भुजबल की गिरफ्तारी पर कहा है कि मुख्यमंत्री फडणवीस और उनके द्वारा 2012 में शुरू किए गए प्रयासों का ये नतीजा है। किरीट सोमैया ने कहा,
इन्वेस्टिगेशन एंड एक्शन ऑफ 70,000 करोड़ इरीगेशन।
किरीट सोमैया कह रहे थे कि महाराष्ट्र के 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले में भी अब कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार व पूर्व सिंचाई मंत्री को भी वो जेल भिजवाएंगे। इस घोटाले में एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल हैं और उनको जब गिरफ्तारी हो गई तो वहां पर राजनीतिक पारा जो है वो गर्म है। सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं अश्विनी अघोर को। अश्विन, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि इस तरह से जब गिरफ्तारी हो गई तो ये कैसे इतना नाटकीय तरीके से गिरफ्तारी हुई?
छगन भुजबल को ईडी ने समन किया था क्वेश्चनिंग के लिए और कल सुबह 11:30 बजे के करीब वो ईडी के दफ्तर में पहुंचे थे और रात को 10 घंटे की पूछताछ के बाद उनको नाटकीय रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब 11:30 बजे ईडी के ऑफिस पहुंचे और देर रात उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन पर आरोप ये है कि दिल्ली में जो महाराष्ट्र सदन का निर्माण हुआ है उसमें उस निर्माण में उन्होंने करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है, उसका ठेका अपने खास लोगों को दिया है, अपने परिवार वालों की कंपनियों को या उनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाकर उसका निर्माण का ठेका दिया गया है और कुल मिलाकर 870 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार उसमें हुआ है।
अब तो, ये हाँ, तो आज 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 इनकी पेशी होगी
जी। उनको आज 11:30 बजे के करीब स्पेशल ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड लेने की कोशिश करेंगे ईडी के अधिकारी।
अच्छा, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा ये बताइए कि राजनीतिक तापमान जो है महाराष्ट्र की राजनीति में वो किस तरह से गर्म हो गया है?
छगन भुजबल महाराष्ट्र के एक गद्दावर नेता है और उनकी गिरफ्तारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। न कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बल्कि पूरे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ी घटना है कि किसी ने सोचा नहीं था कि छगन भुजबल जैसे नेता को कभी गिरफ्तार हो सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी की जैसे ही खबर आई तो उनके जो समर्थक है, उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है नासिक, नासिक शहर और नासिक जिले में कल रात को ही उन्होंने हाईवे जाम कर दिया, प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और कल गिरफ्तारी के बाद एनसीपी के जो नेता है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है धनंजय मुंडे, उनके घर पर राष्ट्रवादी के सारे बड़े नेताओं की एक इमरजेंसी मीटिंग हुई कि ये सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि छगन भुजबल को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब जैसा कि किरीट सोमैया ने कल दावा किया था कि अब
सिंचाई घोटाला है वो
घोटाला भी उसको हम पूरा लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे और यदि ऐसा किरीट सोमैया की बातें मानी जाए जो उन्होंने कहा है कि पूरे एविडेंसेस कलेक्ट कर चुके हैं एसीबी वाले, तो बहुत जल्द अजीत पवार और सुनील तटकरे पर भी गाज गिर सकती है
जो कि सिंचाई मंत्री थे
जी। और यदि ऐसा होता है तो पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पूरा सेकेंड लाइन लीडरशिप ही हो सकता है जेल में चला जाए
जी। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन अघोर, मुंबई से कार्यक्रम में शामिल थे और हमें जानकारी दे रहे थे।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
रुख दिल्ली का करते हैं जहां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने आज पीपल्स मार्च निकालने की घोषणा की है। छात्र दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर संसद भवन तक मार्च करेंगे और इस मार्च के दौरान जेएनयू के अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ कथित तौर पर हुई नाइंसाफी का भी मुद्दा उठाया जाएगा। इस बीच भारत की सरकारी समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से खबर यह है कि जेएनयू की एक उच्च स्तरीय समिति ने कथित रूप से राष्ट्र विरोधी नारेबाजी के मामले में कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य समेत 5 छात्रों को निकालने की सिफारिश की है। इस मामले में अंतिम फैसला वीसी पर छोड़ा गया है। काफ़ी कोशिशों के बाद भी जेएनयू में किसी से हमें आधिकारिक जानकारी इस बारे में नहीं मिल सकी। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने छात्र संगठन AISF की उपाध्यक्ष राहिला परवीन से संपर्क साधा और पूछा कि क्या 5 छात्रों को निकालने संबंधी समिति की सिफारिश के बारे में आप लोगों को कोई सूचना दी गई है।
देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों के पास, स्टूडेंट कम्युनिटी के पास, किसी भी तरह का ऑफिशियल कोई सूचना नहीं दी गई है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कमेटी थी, इस कमेटी को ऑलरेडी स्टूडेंट कम्युनिटी और टीचर एसोसिएशन JNU का पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि इस कमेटी में वो खास तरह के लोग हैं जो BJP के विचारधारा से सहमत हैं और उनके विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरी बात है कि जिन छात्रों पे आरोप है उसमें दलित छात्र भी हैं, माइनॉरिटी भी हैं और फीमेल भी हैं। हम लोगों का डिमांड है कि इसमें जांच कमेटी में एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए जिसमें कि महिला प्रतिनिधित्व भी हो, दलित प्रतिनिधित्व भी हो, सोशल साइंस के प्रतिनिधित्व भी हो, माइनॉरिटी के भी प्रतिनिधित्व हो। लेकिन इस कमेटी को डेमोक्रेटाइज नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग इस कमेटी के किसी भी तरह के सिफारिश को नहीं मानते हैं। JNU का स्टूडेंट कम्युनिटी और टीचर कम्युनिटी भी इसको रिजेक्ट पहले भी कर चुका है और अभी भी हम इसको रिजेक्ट करते हैं।
अभी तो आपके पास आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन अगर आपको आधिकारिक जानकारी दी जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा?
देखिए, हम लोग, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस कमेटी को हम मानते ही नहीं है क्योंकि ये कमेटी डेमोक्रेटाइज नहीं है। हम लोगों का पहला डिमांड शुरू से, पहले दिन से है कि इस कमेटी को सबसे पहले डेमोक्रेटाइज किया जाए और फेयर इंक्वायरी हो। हम लोग आगे भी मूवमेंट में जाएंगे, मूवमेंट को तेज करेंगे और संघर्ष में जाकर फेयर इंक्वायरी की डिमांड करेंगे VC से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, और हमें यकीन है कि JNU प्रशासन इस पे ध्यान देगा।
आज JNU छात्र संघ ने एक मार्च निकालने का ऐलान किया है, क्या इस मुद्दे को भी उस मार्च के दौरान उठाया जाएगा?
देखिए, ये मार्च चूंकि पहले से डिसाइडेड था कि नेशनल मार्च होगा पूरे JNU के रिगार्डिंग और पूरे देश भर में जो विश्वविद्यालय पे और लोकतंत्र पे जो हमला है उसके एकजुटता में लोगों के सारे छात्र, शिक्षक और जो भी लोग जिन पे लगातार हमला हो रहा है उन सब की एकजुटता के साथ मार्च पहले से डिसाइडेड था। और इस कमेटी के रिपोर्ट को चूंकि हम लोग कमेटी को नहीं मान रहे हैं तो देखेंगे जब भी हमको ऑफिशियली आधिकारिक रूप से सूचना देंगे तब हम देखेंगे कि इसको फिर कैसे की, लेकिन मार्च उसी सारे मुद्दों को लेकर होगा।
ये थी AISF की उपाध्यक्ष राहिला परवीन, जो कि बता रही थी कि विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, छात्रों को कोई जानकारी नहीं है कि जो समिति है उसने कौन सी सिफारिशें की हैं। और इस बात पर आज हमारी नज़र रहेगी कि किस तरह की सिफारिशें सामने आती हैं। वहीं छात्रों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस, वामपंथी दल और जनता दल यूनाइटेड भी सरकार के खिलाफ एक मंच पर आते दिख रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने दिल्ली में 21 मार्च को होने वाले छात्र सम्मेलन को समर्थन देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट वात्सल्य राय से।
देश के प्रमुख विपक्षी दल छात्रों की कथित अनदेखी के मुद्दे को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। दिल्ली में 21 मार्च को छात्रों का एक सम्मेलन प्रस्तावित है जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छोड़कर सभी छात्र संगठनों को आमंत्रित किया गया है। छात्रों के इस सम्मेलन को वामपंथी दलों के अलावा कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का समर्थन भी हासिल है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद से ही सभी विपक्षी दल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी के बाद वामपंथी दल और कांग्रेस एक साथ नजर आए। हालांकि विपक्षी दल फिलहाल इस मुहिम की कमान थामने की जल्दी में नहीं है। जनता दल यूनाइटेड के नेता KC त्यागी कहते हैं कि ये छात्रों का संघर्ष है जिसे वो समर्थन दे रहे हैं।
इसमें जो लीड है वो छात्रों की है, चाहे IIT चेन्नई का मामला हो जहाँ पर पेरियार युवा संगठन को बैन किया था, चाहे वो हैदराबाद की घटना हो, चाहे JNU घटना हो और चाहे अब इलाहाबाद की घटना हो। नई सरकार बनने के बाद सरकार का विश्वविद्यालय में दखल बढ़ा है और बहुत दिनों के बाद विश्वविद्यालयों ने अपनी स्वायत्तता के लिए, छात्रों ने अपनी स्वायत्तता के लिए ये आंदोलन छेड़े हैं। ये लड़ाई छात्रों की है, छात्रों ने आवाज उठाई है, उसका हम समर्थन करते हैं, JDU उसका समर्थन करता है।
दिल्ली में 21 मार्च को होने वाले सम्मेलन के लिए CPM के महासचिव सीताराम येचुरी दूसरे विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत में जुटे हैं। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी के मुताबिक येचुरी ने उनसे समर्थन के लिए संपर्क किया और वो दूसरे दलों को भी साथ लाने की कोशिश में है। तिवारी कहते हैं कि ये एक ऐसा संघर्ष है जिसमें एक तरफ मोदी सरकार है और दूसरी तरफ छात्र हैं।
सरकार लगातार छात्र उत्पीड़न कर रही है, उस मुद्दे को हम लोग आवाज उठाना चाहते हैं, वो साथ दिखाना चाहते हैं छात्रों के, नौजवानों के। मुझे लगता है धीरे धीरे इसमें पार्टी को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। पार्टी की लाइन यही है, राहुल जी की लाइन यही है कि युवकों के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ा जाए। आज देश में युवा छला महसूस कर रहा है और जिस तरीके से रास्ता अख्तियार किया गया गुजरात मॉडल की, जिसकी भी आवाज से क्रश कर दो, दो लाइन खींच गई है, एक तरफ मोदी सरकार के जुल्म और उत्पीड़न की कहानी है और दूसरी तरफ छात्र खड़े।
छात्रों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के तेवर तीखे हैं तो केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी का रुख भी आक्रामक है। खासकर जेएनयू में कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाने के मुद्दे पर सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता विपक्षी दलों से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। कैंपस का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए हथियार तो बन गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे राजनीतिक दलों की मंशा पूरी होगी। वात्सल्य राय, बीबीसी दिल्ली।
दिल्ली से रुख उत्तर प्रदेश का करते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी सरकार अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर रही है। 4 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में सरकार 15 मार्च और 16 मार्च को सभी जिलों में समाजवादी विकास दिवस के रूप में इसे मना रही है। जहां एक ओर पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने का दावा करके अपनी उपलब्धियां गिनाने जा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल अखिलेश सरकार को हर मोर्चे पर असफल बता रहे हैं। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा कर लेने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी सरकार नए इरादों के साथ अगले चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि जमीनी हकीकत कुछ अलग है। जहां कई वायदे सिर्फ वायदे ही रहे, वहीं कुछ वायदों पर आंशिक तौर पर ही अमल हो पाया। फिर भी पार्टी आज और कल 2 दिन जमीनी स्तर पर लोगों को ये बताने की तैयारी कर रही है कि उसने इन वायदों को पूरा कर लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव दीक्षित कहते हैं,
घोषणा पत्र के वादे तो इस साल पहले पूरे हो गए। उन्हीं वादों का और उन्हीं योजनाओं का और जो उसके अलावा जो योजनाएं हुई उसके प्रचार प्रसार के लिए ऐसा एक प्रयोजन किया गया है कि हर क्षेत्र में हर एक हमारे पार्टी का निकल जाएगा और इन उपलब्धियों को जनता के बीच में रखेगा। सब योजनाएं समय समय पर चल रही है और चलती रहेंगी, उनमें कोई खत्म नहीं हुई है।
समाजवादी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा शासन के कथित भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था। विपक्षी दल सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सबसे ज्यादा घेरते हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि ये सरकार लगभग सभी मोर्चों पर विफल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र मदान,
अब ये समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, ये हमारी ही नहीं आपकी ही नहीं उत्तर प्रदेश के आम जन के विकले के नीचे नहीं उतरेगा। उत्तर प्रदेश का आवाम अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कानून व्यवस्था को देखिए बद से बदतर हुई है, घोटाले बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। रोजगार के अवसर दिलाने की उन्होंने बात कही कि कहीं कोई रोजगार नहीं बढ़ा है, और दूसरी तरफ किसान खासकर गन्ना किसान अपने भुगतान को लेकर आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है।
समाजवादी पार्टी ने साल 2012 में जब चुनाव जीता था तब उसने अपने कई वायदों को आनन फानन में लागू कर दिया था। बाद में इनमें से कुछ को बंद करना पड़ा। वो इन योजनाओं को अब फिर से नए कलेवर में लागू कर रही है। यही नहीं, कई योजनाओं को तो सरकार ने शुरू ही नहीं किया। ये सरकार की कोई रणनीति है या फिर खर्चे में कटौती, इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र कहते हैं,
चुनावी वादों के माध्यम से या अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखकर समाजवादी पार्टी चुनाव में आई थी। शुरू में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बांटने की कोशिश की, हालांकि कंबल और साड़ी का वितरण शुरू से ही नहीं हो पाया। ये बात उन्होंने अभी विधानसभा में मानी भी, लेकिन उन्होंने बेरोजगारी भत्ता, कन्या धन और एक लैपटॉप को देने की शुरुआत की। लेकिन जिस तरह से 2014 में जो परिणाम आए लोकसभा के चुनाव में, उनको ये लग गया कि खाली लोक प्रभाव नीतियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो स्पीड ब्रेकर के रूप में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उनके सामने और उन्होंने फिर से रियलाइज किया कि नहीं, इनसे नहीं, कुछ हमें ग्रास रूट लेवल पे करना भी पड़ेगा।
बहरहाल सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं, अपने किन वायदों को उसने पूरा किया किसे नहीं ये तो प्रदेश की जनता ही बता सकती है, लेकिन वायदों को आंशिक रूप से लागू करने के तरीके पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और कार्यक्रम में अब अखबारों के पन्ने पलटने का वक्त है। प्रगति इस काम को मुस्तैदी से कर चुकी है। प्रगति, आज थोड़ा सा आपकी तबीयत गड़बड़ है।
हाँ, थोड़ा गला खराब है, बाकी मैं बिल्कुल मैं आपको पहले बता दूं कि कुछ 3-4 खबरें जो सभी अखबारों में बहुत प्रमुखता से ली गई हैं। एक तो संसद में पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे को अलग अलग मुद्दों पर घेरा। विपक्ष ने ये कहा कि आरएसएस का जो ताज़ा बयान आया है कि संपन्न लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, तो उस पर विपक्ष ने काफ़ी सरकार को घेरा। तो उसमें अरुण जेटली ने कहा कि कोटे में ऐसा कोई बदलाव रिजर्वेशन में नहीं होगा। फिर ब्रिटिश नागरिकता पर राहुल जवाब दें, ये सरकार ने पक्ष को घेरा इस पर, और इस पर बहस हुई। दूसरी खबर है, कन्हैया समेत 5 छात्रों को जेएनयू से निकालने की सिफारिश की गई है। और जैसे कि आपने खबरों में बताया कि छगन भुजबल जो है महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कुछ ऐसी खबरें हैं कि जो सभी अखबारों में है। बाकी जनसत्ता में इस खबर का बहुत अच्छा विश्लेषण किया गया है कि सीमा के आर पार बवाल, उधर अफरीदी इधर ओवैसी, ना भारत में दीवानगी जताने पर देशद्रोही हुए अफरीदी और ओवैसी। AIMIM के नेता ओवैसी बोले, नहीं बोलूंगा भारत माता की जय। तो इन दोनों को एक दूसरे के बरक्स करके उन्होंने बहुत दिलचस्प एक विश्लेषण दिया है। खांसी सिरप समेत 344 दवाओं पर प्रतिबंध, ये भी जनसत्ता की खबर है। दैनिक जागरण ने लिखा है, आज से छाएगा T20 का खुमार। नागपुर में भारत और न्यूजीलैंड का मैच है। और ये एक महत्वपूर्ण खबर है दैनिक जागरण में कि फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने का आदेश दिया गया है, कि जो अभी जो ओलावृष्टि वगैरह हुई है उससे फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका आकलन होगा। और वन रैंक वन पेंशन की पहली किस्त जारी कर दी गई है।
एक बहुत ही अच्छी खबर मैं पढ़ना चाहूंगा, ये अमर उजाला में है। IIT कानपुर के छात्र को 1,80,00,000 का एक पैकेज मिला है।
सुबह सुबह सुनकर बहुत अच्छा लगता है।
और एक फेसबुक ने प्री प्लेसमेंट में 1,00,000 रुपए का सालाना वेतन पैकेज ऑफर किया है, और इस कंपनी ने 4 छात्रों को जॉब दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की खबरें जो हैं हौसला बढ़ा देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति। और अब हम विशेष श्रृंखला की बात करेंगे, कश्मीरी पंडितों पर हमारी विशेष श्रृंखला इनका भी कश्मीर। इस श्रृंखला के तहत पहले हम उन कश्मीरी पंडितों के अनुभव प्रसारित कर रहे हैं जिन्हें अलगाववादी आंदोलन शुरू होते ही कश्मीर घाटी में अपना घर बार सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा था। पत्रकार और लेखक राहुल पंडिता 1996 से दिल्ली में रह रहे हैं। वो येल वर्ल्ड फेलो रह चुके हैं। उनकी किताब अवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स और हेलो बस्तर काफी चर्चित रही है। राहुल पंडिता याद कर रहे हैं श्रीनगर में बिताए अपने बचपन के दिनों को।
अब भी सपनों में बेचैन सा मैं खुद को अपने घर के बरामदे में तैरता सा देखता हूं। उसके लॉन में सेब का एक पेड़ था, उसकी सबसे मोटी शाख से झूलता हूं। उसके गुलाब की क्यारियों के बीच छिपकर मैं चंद्रशेखर आजाद की तरह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ मंसूबे बनाता हूं, ठीक जैसे बचपन में किया करता था। मैं 1990 में 14 साल का था जब मेरे परिवार को कश्मीर छोड़ना पड़ा। तब से लेकर अब तक हम कई जगहों पर कई मकानों में रहे, लेकिन उनमें से किसी को भी मैं घर नहीं कह पाया। घर तो बस एक ही था जो वादी में पीछे छूट गया। लेकिन कभी सोचता हूं, क्या वो वाकई पीछे छूट गया? मेरी मां और पिताजी ने अपनी पूरी जमा पूंजी, मां के गहने और दोनों के प्रोविडेंट फंड जोड़कर श्रीनगर में वो घर बनाया जिसमें मैंने होश संभाला। उनके पास थोड़ा भी पैसा जमा होता वो उसे घर पर लगा देते। मेरी बहन और मैं स्कूल से लौटकर घर के पीछे लकड़ी की बनी बालकनी में बैठकर होमवर्क पूरा करते। माँ शाम 5 बजे दफ्तर से घर आती और अपने पर्स की पिटारी से दूर दराज के गांव की सौगातें हमारे सामने रखती। हरे अखरोट, बादाम, भुट्टे, सिंघाड़ा और चेरी, जिन्हें हम कश्मीरी में गिलास कहते हैं। और फिर ठीक 6 बजे पिताजी नारंगी रंग की मछली के आकार की डोरबेल बजाकर अंदर आते और सोवियत लैंड मैगजीन किसी लूटे हुए खजाने की तरह हमारे सामने रखते। हमारे घर में कोई भी वामपंथी नहीं था, लेकिन एक दोस्त ने अपने दादाजी से प्रेरणा पाकर ब्रिजनेफ के भारत दौरे के उपलक्ष्य में टॉफी और च्विंगम से एक स्मारक बनाया। हमारे घर में अगर कोई विचारधारा थी तो वो ये कि ज्ञान यानी नॉलेज के बिना जीवन व्यर्थ है। इसीलिए ऊपर एक कमरे में किताबों का एक बड़ा शेल्फ था। बसंत में एक खास दिन इन्हें निकालकर इनकी पूजा की जाती। कश्मीर में हमें इस बात का एहसास बड़ी जल्दी होता था कि हम पंडित हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटरों के कसीदे पढ़ने वाला आपका सहपाठी या 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या पर खुशी जाहिर करने वाला आपका पड़ोसी। हमें इस बात की ताईद भी की जाती कि हम उनसे झगड़ा मोल न लें क्योंकि वे बहुसंख्यक हैं और हम सिर्फ मुट्ठी भर। हमें ये याद तो रहता लेकिन बचपन में हम इसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं करते थे। हमारे पास करने को और देखने सोचने समझने के लिए कितना कुछ और था। मसलन शालीमार बाग में घूमने वाले विदेशी पर्यटकों में कईयों के बाल लंबे क्यों हैं, कश्मीरी उन पर तंज कसते हुए गाते जाना ना ये अजब हाल देखो लंबे लंबे हिप्पियों के बाल देखो, या ये कि पोखरेबल मंदिर में वो नवयुवक अभिनव गुप्त और दार्शनिक निचाह पर लंबे व्याख्यान के बाद आंखें बंद कर समाधि में क्यों चला जाता है, या ये कि लाल चौक के घंटाघर की घड़ी में ठीक टाइम क्यों नहीं रहता। पर हमें इस बात का जरा भी पता नहीं था कि कुछ ही सालों के बाद कश्मीर में ठीक टाइम बीसियों सालों तक नहीं रहेगा। हम शिवरात्रि पर अपने देवताओं को पूजते रहे और बसंत में अपनी किताबों को, जब घर से निकले तो इन्हें ही साथ लेकर निकले। वो अब भी हमारे साथ हैं और साथ हैं सपने जिनमें मैं खुद को देखता हूँ अपने घर के बरामदे में तैरता हुआ सा सेब के पेड़ की सबसे मोटी शाख से झूलते हुए। अब घर बस सपनों में ही जाना होता है।
इनका भी कश्मीर। राहुल पंडिता याद कर रहे थे श्रीनगर में बिताए अपने बचपन के दिनों को। और अब बात करेंगे खेल समाचारों की। वर्ल्ड 2020 में आज से सुपर 10 ग्रुप के मुकाबले शुरू हो रहे हैं। आज मेजबान भारत और न्यूजीलैंड के बीच नागपुर में मुकाबला होने वाला है। नितिन श्रीवास्तव नागपुर पहुंच चुके हैं। नितिन, पहले तो मुझे ये बताइए कि तैयारियां कैसी हैं? पहला मैच हिंदुस्तान का।
जी जी बिल्कुल, भारत का पहला मैच और तैयारियां और क्रिकेट वो भी T20 और अभी वर्ल्ड कप समझिए नागपुर को एकदम सजा के रखा हुआ है। स्टेडियम के आसपास जो है 3 किलोमीटर दूर से ही समझ में आ जाता है कि कोई बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। और जाहिर है भारतीय टीम का मैच है, भारत की टीम पर काफी दबाव है इस टूर्नामेंट में शुरुआत के पहले से ही, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ढाका से एशिया कप जीत के लौटे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जनवरी में 3-0 से मात दी थी ऑस्ट्रेलिया को T20 में उन्होंने, और अपने खुद होम ग्राउंड पर मैच हो रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है, तो जाहिर है उनके ऊपर प्रेशर है कि जीते और बेहतर करें।
लेकिन नितिन, न्यूजीलैंड के खिलाफ शॉर्ट फॉर्मेट में हिंदुस्तान जीता नहीं है।
हाँ, और एक बात ये भी है, दूसरी बात ये भी है कि नागपुर का भी जो मैदान है, यहाँ पर भारत का T20 का रिकॉर्ड भी खासा, एक ही मैच खेला है श्रीलंका से, वो हारे हैं। और न्यूजीलैंड की टीम में बहुत ज्यादा यंगस्टर्स हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, मार्टिन गप्टिल जैसे प्लेयर हैं, बोल्ट ऐसे खिलाड़ी हैं, तो इसलिए भारत को ये मैच बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो ये कि ये ग्रुप ऑफ डेथ है, यानी इस ग्रुप में आप न्यूजीलैंड से जीतते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान आपको मिलेगा, उसके बाद आपका इंतजार ऑस्ट्रेलिया कर रही है, और उसके बाद आपको बांग्लादेश से भी भिड़ना पड़ेगा।
अच्छा ये बताइए नितिन, आप क्या देखने पहुंचे हैं, यानी कि आपकी नजरें किस खिलाड़ी पर हैं हिंदुस्तान?
देखिए अगर भारत के खिलाड़ियों की आप बात करिए तो मेरी नजर जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा और सुरेश रैना जो मैच विनर है, मेरे ख्याल से ये 3 खिलाड़ी बहुत अहम रहेंगे। और अश्विन की गेंदबाजी, क्योंकि आज का जो ट्रैक है वो फ्लैट ट्रैक है और शायद स्पिनर्स की मदद करें।
जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन श्रीवास्तव सीधे नागपुर से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनने का वक्त आ गया है।
बीबीसी समाचार। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख नेता छगन भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा ने फोन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीरिया से रूसी सेना के हटाए जाने पर बात की है। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सीरिया से रूसी सेना को वापस बुलाने की घोषणा की थी। अमरीका में व्हाइट हाउस ने एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदार डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। बीबीसी समाचार।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति सक्सेना। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, दो खबरें बता दूं कि जिन पर हमारी नज़र रहेगी। एक तो इंडिया का जो मैच हो रहा है उस पर नज़र रहेगी, और इसके साथ भुजबल के मामले में क्या होता है इस पर नज़र रहेगी, कन्हैया पर भी नज़र रहेगी। मोहनलाल शर्मा को अगले कार्यक्रम तक विदा दें। नमस्कार।